का अर्थ है महाविष्णु, जो कारणार्णव समुद्र में लेटे हुए हैं। उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य लोकों का विराट स्वरूप विकसित होता है। ब्रह्मांड के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वटवृक्ष के बीजों से असंख्य वटवृक्ष विकसित हो आते हैं। वे महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार किया हुआ है। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूं जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु हैं। ब्रह्मांडों के अगुवास सारे ब्रह्मा अनेक दिव्य शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में वे श्वास छोड़ते हैं। इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रखा होगा, तभी वे इसके विषय में बात कर रही थीं। दिव्य विषयों की सही सही ज्ञान का एकमात्र साधन है प्रामाणिक स्रोत, इसका कोई विकल्प नहीं है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः होने लगता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जीव अपनी सत्ता या पहचान खो देता है। सत्ता तो बनी रहती है और ज्यों ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुप्तोत्थिति न्याय अर्थात निद्रा से जागकर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है तो वह यह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और वह जगते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु ज्यों ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण हो आता है और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु ज्यों ही दूसरी सृष्टि होती है वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 18 से 20 में भी हुई है। सृजनात्मक शक्ति के कार्याभिमुख होने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं है। उनका शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक है और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धर्म में रहते हैं जो पूर्ण और अद्वितीय है। अनुवाद को दोहराइएगा। वे कहने लगी, ये तो आदि भगवान हैं, जो हमें निश्चित रूप से स्मरण है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे, क्योंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं। मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुकी हुई हो। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषये नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर हस्तिनापुर की महिलाएं भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही हैं। भगवान कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं और हस्तिनापुर के निवासी ये नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ में रहें। ये भक्त की पहचान है कि भक्त श्री कृष्ण से इतना आसक्त होता है कि वो कभी भी श्री कृष्ण का संग छोड़ना नहीं चाहता। जहां प्रेम है वहां आसक्ति है, प्रेम के विषय को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये एक भगवान श्री कृष्ण के लिए विशेष समस्या थी कि जहां भी वो जाते तो वहां के लोग उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। यही भगवान का स्वरूप है, सर्व आकर्षक है, सभी को आकर्षित करते हैं। तरह तरह के प्राणी भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य हो। वृंदावन में हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत में कि यहां के सारे पशु पक्षी प्राणी सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त थे। जब श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों को लेकर गौओं को चराने के लिए जाते थे वन में, तो उनकी बांसुरी की ध्वनि को सुनकर सारे गाय हिरण मोर पक्षी इत्यादि अपने अपने स्थान में खड़े रह जाते थे। जो गाय हैं वो अगर कुछ घास चबा रही होती तो बस बिना चबाए अपना मुंह खोल के खड़े रह जाती कृष्ण को देखते देखते। जो पक्षियां हैं वो अपने गीत गा रही होती हैं और जब कृष्ण को देखती हैं तो अपना गीत छोड़ देती हैं, बस उसी मुद्रा में उसी तरह खड़े खड़े अपनी शाखा के ऊपर बैठे हुए वो कृष्ण को देखने लगती हैं। हिरण भी इसी प्रकार से करते हैं, सारे पशु प्राणी और फिर श्री कृष्ण के पास धीरे धीरे से अग्रसर होते हैं और कृष्ण को छोड़ते नहीं हैं। तो कृष्ण के गायों की बात तो दूर है और फिर जो अन्य भक्त हैं भगवान के उनकी बात भी दूर है। तो यहां श्री कृष्ण हस्तिनापुर में कई महीनों तक रहे अपने पांडव भक्तों के साथ में, विशेष करके पांडवों के ऊपर उनकी कृपा थी। एक बार तो वो जाने लगे थे लेकिन उस समय उत्तरा देवी वहां पर आई कि मेरे गर्भ का खतरा है, अभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है तो मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। तो श्री कृष्ण ने रक्षा की, थोड़े समय के लिए रह गए। कुंती महारानी ने भी प्रार्थना की थी जिसकी वजह से कृष्ण रुक गए। दोबारा जब चलने लगे तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने रोक दिया, कहा कि अब कैसे चलो जाओगे आप, फिर हमारा क्या होगा। तो वो भी फिर से रुक गए और इस बार तो फाइनल हम निकल रहे हैं। क्योंकि वहां द्वारका में भी तो उनके भक्त उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो यहां पर श्री कृष्ण अपना दर्शन हस्तिनापुर के सारे निवासियों को देते देते जा रहे हैं, और हस्तिनापुर में रहने वाली जो राजमहल में जो स्त्रियां थीं, वो भी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थीं। वो अपने छत पे जाकर या खिड़कियों से वो आकर जो है श्री कृष्ण की स्तुति कर रही थीं। अब ऐसा कोई वर्णन नहीं है शास्त्रों में कि महिलाएं उस समय गुरुकुल में जाती थीं। लड़के तो जाया करते थे, लड़के गुरुकुल में 5 साल की उम्र या 7 साल की उम्र में जाते थे और 20-25 साल की उम्र तक रहा करते थे, ये एक प्रथा थी। परंतु लड़कियों के बारे में ऐसा कोई वर्णन नहीं आता। लड़कियों का शिक्षण जो है वो घर में ही हुआ करता था, और विशेष करके मां जो है, मां का स्थान बहुत महत्वपूर्ण, वो अच्छे संस्कार देती थी। और फिर अगर शिक्षा देनी भी हो तो कोई घर में आके सिखा देता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाएं एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, और यहां हस्तिनापुर की महिलाओं का के प्रार्थना ये दूसरे उदाहरण है कि हालांकि ये महिलाएं जो हैं कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गईं, विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय में नहीं गईं, फिर भी वो सारे तत्वों से परिचित थीं। ऐसी कोई बात नहीं है जो कि वो नहीं जानती थीं। जो आजकल एमए पीएचडी करने वाले लोग हैं वो भी नहीं जानते, ऐसे तत्वों को वो भली भांति श्रद्धा पूर्वक तत्वतः जानती थी। कुंती महारानी की प्रार्थना उदाहरणार्थ एक ऐसी प्रार्थना है जिसको पीएचडी वालों को पढ़कर उसके ऊपर पीएचडी करना चाहिए, ऐसा विषय है कुंती महारानी की प्रार्थना। खुद कुंती महारानी ने कभी पीएचडी नहीं किया, उसी प्रकार से ये महिलाएं हैं, और वो भी ब्राह्मण नहीं है, पंडिताइन नहीं है, ये तो क्षत्रिय हैं सब, लेकिन फिर भी उनको इतना ज्ञान है, कृष्ण को देखकर तुरंत पहचान गई हैं कि ये तो परम सत्य है। सवय किलायम पुरुषः पुरातनो, किला मतलब निश्चित ही, कोई उनके मन में संदेह नहीं है। अयम, अयम मतलब ये श्री कृष्ण, सह वह श्री कृष्ण, जैसा मुझे स्मरण है वही मैं याद करती हूं, हमने बहुत कुछ सुना है, ये निश्चित रूप से पुरुषः पुरातनो, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, अद्वैतमच्युतमन आदिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में घोषणा करते हैं कि वैसे भगवान श्री कृष्ण आदि हैं, आद्यम पुराण पुरुषम, पुराने हैं बहुत, पुराने मतलब बहुत ही सबसे आदि पुरुष हैं वो, लेकिन है नव यौवनम, एक 16 साल के युवक के भांति वो प्रतीत होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि पश्चिम देशों में हालांकि कई धर्मों के ग्रंथ हैं, परंतु भगवान के व्यक्तित्व के बारे में, भगवान के सुंदर रूप के बारे में, भगवान के धाम के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, और बस अपनी बुद्धि चलाकर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भगवान ने तो सृष्टि की रचना की, और सृष्टि की रचना हुए बहुत साल हो गए, करोड़ों करोड़ों साल हो गए, इसका मतलब है कि भगवान तो बहुत बूढ़े होंगे। और इस दुनिया में तो हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा है तो कैसे दिखता है, उसके बाल सफेद होते हैं, पीठ झुका हुआ होता है, और हो सकता है कि छड़ी लेकर वो चल रहा हो। तो एक जगह प्रभुपाद कहते थे, एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है पश्चिम देशों में, जबकि एक चित्रकार ने भगवान की कल्पना की है, और ये सोचकर कि भगवान ने सृष्टि की रचना की तो इतने बूढ़े होंगे तो भगवान को एक बूढ़ा व्यक्ति के रूप में बनाया गया है, लंबे लंबे सफेद दाढ़ी और बेचारे झुके हुए हैं, पीठ जो है बक गया है। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे भगवान ऐसे नहीं है, हालांकि वो पुराण पुरुष हैं, सबसे पुराने हैं, वो सबसे बूढ़े हैं एक दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी नव यौवनम च, बस एक 15 या 16 साल के युवक के समान दिखते हैं। अंग्रेजी श्रीमद् भागवत क्लास में जो है यही चर्चा कई दिनों से चलती आ रही है कि श्री कृष्ण जब मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं तो मनुष्य समाज के प्रथा या मनुष्य समाज के जो नियम हैं उनका पालन करते हैं, मनुष्यों की जो कार्यकलाप होते हैं, मनुष्यों में जो रीति रिवाज होते हैं वो भी उनका नकल करते हैं। अब यहां पर मनुष्य समाज में जब एक बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद फिर माता पिता उसका पूरी तरह से देखभाल करते हैं, बच्चा जो है वो पूरी तरह से अपने पालकों के ऊपर निर्भर होता है, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है वो, कुछ भी नहीं कर सकता। और धीरे धीरे से जैसे उसका शरीर बढ़ता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, तो धीरे धीरे वो स्वतंत्र होने जाता है, शरीर बड़ा होता है, फिर वो चलने लगता है, भागने लगता है, अपने मित्रों के साथ जाता है। बाल्यावस्था से फिर वो पौगंड अवस्था को प्राप्त करता है, पौगंड से किशोर अवस्था को, किशोर अवस्था से यौवन की अवस्था को, और ऐसे बढ़ते बढ़ते व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। तो श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो वो भी नकल करते हैं मनुष्य समाज की, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, जैसे मानो हमारा जन्म हुआ, इसलिए वो भी एक माता पिता को चुनते हैं, हालांकि वो सभी के माता पिता हैं, उनके कोई माता पिता तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसे अपने भक्तों को चुनते हैं। जयति जयति देवो देव की नंदनसौ, उस भगवान का जय जयकार हो, महाराज कुलशेखर कहते हैं, जिन्होंने देवकी और वसुदेव को अपना माता और पिता चुन लिया, चुना। हम नहीं चुन सकते, हमें कोई माता पिता जबरदस्ती मिल जाते हैं प्रकृति के नियम के अनुसार। अभी हम चयन नहीं कर सकते कि अगले जन्म में मेरे माता पिता टाटा और बिरला होने चाहिए, नहीं होगा ऐसा, यह हमें किसी राजा का पुत्र बनना चाहिए अगले जन्म में, नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, कर्म करना। एक बार हमने कर्म कर लिए फिर मामला प्रकृति के हाथ में है, फिर प्रकृति हमें एक उपयुक्त शरीर देगी, एक उपयुक्त कुटुंब देगा, एक उपयुक्त योनि देगी अगले जन्म के लिए। तो भगवान ऐसे नहीं है, भगवान चयन करते हैं, कौन अभी लायक भक्त है, कौन इस काबिल है कि वो मेरे माता पिता बने, हाँ ठीक है ये अच्छे भक्त हैं, चलो इनको भक्त बना, इनको माता पिता इसको बनने के लिए चांस दे दें। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता को चुना और माता पिता के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहे, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है और अन्य बच्चों की तरह धीरे धीरे उनका शरीर बढ़ते रहा। और जब किशोर अवस्था की प्राप्ति हुई उनको, तो फिर उसके आगे वो बढ़े नहीं। तो मनुष्य समाज की नकल उन्होंने केवल किशोर अवस्था तक की, मतलब जहां तक शरीर के बढ़ने का, शरीर की वृद्धि का प्रश्न है। किशोर अवस्था को प्राप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण बस उतने ही दिखते हैं जैसे मानो एक 12 या 15 साल का युवक हो, एक तरुण हो, लड़का। हमने कभी ये नहीं देखा भगवान श्री कृष्ण का वर्णन या भगवान श्री कृष्ण का चित्र जिसमें आपने श्री कृष्ण को कोई सफेद बालों से देखा हो, कभी देखा है सफेद बाल, या श्री कृष्ण अपने पीठ झुक कर हैं, कोई छड़ी साथ में लेकर चल रहे हैं, नहीं। हमेशा श्री कृष्ण एक किशोर अवस्था में होते हैं, नव यौवनम च, हालांकि पुराण पुरुषम, सबसे पुराने हैं, तो यहां पर हस्तिनापुर की महिलाएं कह रही हैं, सवै किलायम पुरुषः पुरातनो, वो देख रही हैं कि श्री कृष्ण बूढ़े नहीं लग रहे हैं, उनके सामने, उनकी आंखों के सामने वही परम सत्य खड़े हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, एक तरुण के समान लग रहे हैं। हस्तिनापुर में भी भगवान श्री कृष्ण बूढ़े की तरह नहीं लग रहे थे, वो एक नौजवान की तरह दिखाई पड़ रहे थे। फिर भी यहां ये महिलाएं बोल रही हैं, ये निश्चित रूप से सबसे पुराने, सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं, ऐसा हमने सुना है। यह एक आसीद विशेष आत्मनी, और यही वो व्यक्ति है, यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, ये सृष्टि का निर्माण हुआ, ये सृष्टि का पालन हो रहा है, सृष्टि का संहार होगा और पुनः सृष्टि का निर्माण होगा, पुनः पालन, पुनः संहार, और ये चक्र निरंतर चलता है, अनादि काल से चलते आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। तो प्रश्न ये आता है कि अगर भगवान इस सृष्टि के उत्पादित वस्तु हैं या व्यक्ति हैं, तो भगवान को किसने, फिर सृष्टि को किसने बनाया? इसका मतलब है कि कोई भगवान नहीं है। कहने दूसरे शब्दों में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान इस सृष्टि के व्यक्ति नहीं है, बल्कि सृष्टि उनकी एक शक्ति है। श्रीमद् भागवत के जब चतुर्थ श्लोक के पहले ही श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया गया है, जब भगवान नारायण विष्णु ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं श्रीमद् भागवत का, केवल चार श्लोकों में, जिसको चतुर्थ श्लोकी भागवत कहते हैं, अहम एवासम एवाग्रे, वो कहते हैं एव अग्रे, सबसे पहले मैं ही था, सृष्टि के निर्माण के पहले अकेला मैं ही था, हे ब्रह्मा तुम नहीं थे, शिवजी नहीं थे, ये देवता गण नहीं थे, कोई नहीं था, और सृष्टि के समय मैं अकेला होता हूं। कैसे? क्योंकि मुझसे स्वतंत्र कुछ नहीं है। देखिए, सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवः, प्रभव मतलब उत्पन्न होना, सब कुछ, सर्वस्य, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ, ऐसा कोई नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से नहीं आता है। इति मत्वा, जो इस बात को जान लेता है भली भांति, भजन्ते माम, वो मेरा भजन करता है, वो मेरी भक्ति करता है। बुध भाव समन्विताः, बड़े जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो, और बड़े भक्ति भाव से मेरी सेवा में वो लग जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह इस बात की पुष्टि की है, गीता में और अन्य जगह में भी, कि सब कुछ उनसे उत्पन्न होता है, इसलिए कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति उनसे स्वतंत्र नहीं है। ये सारी भौतिक सृष्टि, ये भगवान की शक्ति है। आध्यात्मिक जगत, ये भी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के विभिन्न अंश हैं, उनके कण मात्र अंश, तटस्था शक्ति। आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंगा शक्ति है, ये भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति है, और जितने भी जीवात्माएं हैं वो उनकी तटस्था शक्ति हैं। तट, तटस्था, तट में स्थित होने वाली शक्ति। इसलिए हर कोई व्यक्ति, हर चीज भगवान में है, भगवान के बाहर कुछ नहीं है। इसलिए भगवान को परम सत्य कहते हैं। परम सत्य वो है जिन पर सब कुछ आधारित है। जन्मादस्य तन्मयाद इतरदश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मरदाय आदि कवये मुह्यंति यत्सूरयः। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमही। ये श्रीमद् भागवत का पहला ही श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पहचान दी गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते, भगवान को हम नमस्कार कर रहे हैं। तो ये भगवान का नाम क्या है? वासुदेवाय, उनका नाम है वासुदेव। और फिर उनकी पहचान कराने के बाद उनका सबसे पहले हम नाम कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन, परिचय करते हैं किसी का, किसी से मिला रहे हैं। अच्छा भाई साहब ये हैं फलाना, इनका नाम है ये। और फिर हम कहते हैं हाँ ये इस तरह का व्यवसाय करते हैं, ये ऐसा है वैसे, उनका परिचय देते हैं। उसी प्रकार से व्यासदेव भगवान का परिचय दे रहे हैं सबसे पहले श्लोक में और कह रहे हैं भगवान ये है वासुदेव श्री कृष्ण। और फिर श्री कृष्ण की पहचान क्या है? जन्म आदि अस्य, आदि मतलब केवल जन्म नहीं, केवल सृजन नहीं, पालन संहार सब कुछ श्री कृष्ण के द्वारा होता है। ऐसा नहीं कि केवल श्री कृष्ण सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं फिर सृष्टि को छोड़ देते हैं। ऐसा एक धर्म है पश्चिम देश में जो जिनका तथ्य ये, जिनका कथन ये है, वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं कि यहां संसार में बुराइयां क्यों हैं, यहां संसार में अन्याय क्यों होते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। ये इनके लिए बहुत एक बड़ी विडंबना की बात है, भ्रम की बात है, भ्रामक बात है उनके लिए। बहुत इस विषय के ऊपर तर्क चलता है उनके बीच में, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। इसलिए उनके समाज के एक दार्शनिक ने यह प्रस्ताव सामने रखा कि हम मानते हैं ठीक है भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति की, लेकिन उत्पत्ति करने के बाद जो है सृष्टि को छोड़ दिया, पालन करना संहार करना उन्होंने छोड़ दिया। अब इसलिए अब अन्याय हो रहा है ये दुनिया में, क्योंकि भगवान के कंट्रोल में नहीं है, सब नियंत्रण में नहीं है। लेकिन अगर ये लोग भगवद गीता समझ जाते, श्री कृष्ण कौन है, ये कर्म सिद्धांत क्या है, तो सब आसानी से वो समझ जाते। तो श्री कृष्ण जो है जन्म जो अर्थात सृष्टि के सृजन पालन संहार तीनों के ही कारण है, इसलिए उनसे कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं है, वो अद्वितीय है। इसलिए सृष्टि के समय भी वही एकमात्र है। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि के बाद भी मैं ही अकेला रहता हूं। तो भगवान ही अकेले हैं परम सत्य, लेकिन रस का आदान प्रदान करने हेतु वो अपने आप को विस्तार करते हैं अनंत जीवों में, अनंत अवतारों में, अनंत शक्तियों में। और इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में इतनी तरह की विविधताएं होती हैं ताकि लीला हो सके। तो यहां हस्तिनापुर की महिलाएं ये भी जानती हैं स्पष्ट, न केवल ये पुराण पुरुष हैं, लेकिन ये सृष्टि के सृजन होने के पहले ही भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व है, वो पहले से ही विद्यमान है। ऐसे नहीं कि सृष्टि का निर्माण होने के बाद उनका जन्म हुआ, नहीं, पहले से है, स्पष्ट यहां बता रहे हैं। आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगत आत्मनीश्वरे। और साथ साथ वो ये भी कहती है चूंकि वे परमेश्वर हैं अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुकी हुई हो। तो ये एक प्रश्न आता है कि अगर भगवान ही हैं जो सृष्टि का संहार भी करते हैं और अगले सृष्टि का निर्माण भी करते हैं, तो इस बीच एक संहार और अगले आने वाले निर्माण के बीच में यहां सारे जीव हैं वो कहां जाते हैं? हम भगवद गीता में देखते हैं, यह प्राथमिक ज्ञान है भगवद गीता का कि जीव का नाश कभी नहीं होता, सृष्टि का नाश होता है लेकिन शक्ति का नाश नहीं होता। भौतिक शक्ति ये तो शाश्वत है, लेकिन भौतिक शक्ति द्वारा जो बनाए गए रूप हैं, नाम हैं, वो नश्वर हैं, लेकिन शक्ति नश्वर नहीं है। यह भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भौतिक शक्ति भी नश्वर नहीं है। तो इस प्रकार से अगर जीव नश्वर नहीं है, शाश्वत है, तो सृष्टि के संहार के बाद क्या होता है? इस बात को भी यह हम हस्तिनापुर की महिलाएं अच्छी तरह से जानती हैं। वो कहती है, निमीलिता आत्मन निशि सुप्त शक्तिशु। वो भगवान श्री हरि में, इन्हीं में, जिस श्री कृष्ण को हम देख रहे हैं इस समय, उन्हीं में वो सुप्त ले जाते, लुप्त, वो लीन हो जाते हैं। और लीन होकर ऐसे निद्रा में रहते हैं, और पुनः सृष्टि का निर्माण जब होता है तो फिर से वो अपने कार्यों में ऐसे लग जाते हैं कि जैसे निशि सुप्त शक्तिशु। जैसे एक व्यक्ति सोने के बाद उठता है और फिर अपने कार्यकलापों में लग जाता है। प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि इस बात को सुप्तोत्थिति न्याय कहते हैं। जब आदमी सोया हुआ होता है उसको कुछ नहीं पता रहता कि मैं कौन हूं, मैं राजा हूं, मैं कहां हूं, मेरे परिवार में कौन है, मुझे कल क्या करना है, कुछ नहीं मालूम उसको। इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि नींद जो है, निद्रा, ये सबको एक बना देती है। राजा, रंग, बड़े आदमी, छोटे आदमी, रूसी, अमेरिकन, भारतीय, पशु, कुत्ता, बिल्ली, सब एक। क्योंकि नींद के समय किसी को नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, दुनिया क्या है, कुछ नहीं मालूम। तो जब ऐसा व्यक्ति अज्ञान से जग जाता है, निद्रा मतलब अज्ञान है, जब ऐसे अज्ञान से वो जग जाता है तो पूरा ज्ञान उसको आ जाता है। तुरंत अपने आप को पहचान लेता है कि हां, मैं तो ये हूं, मुझे अब ये काम करना है, मंगल आरती जाना है, जप करना है। क्योंकि हृदय में स्थित परमात्मा उसको पूरी तरह से ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, प्रेरणा देते हैं। और उस व्यक्ति को नहीं लगता कि मैं 6 घंटा सोया, सब कुछ भूल गया, तो मैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छी तरह से उसको मालूम है, कल रात को मैंने क्या किया, सोने के पहले मैं कृष्ण बुक पढ़ रहा था, श्रीमद् भागवत पढ़ रहा था, यह प्रसंग चल रहा था, सब कुछ उसको मालूम होता है। ठीक उसी प्रकार से जीव जो है भगवान महाविष्णु में सुप्त रहते हैं, लीन रहते हैं। और जब भगवान की इच्छा अनुसार अगले सृष्टि का निर्माण होता है तो भगवान अपने नेत्रों द्वारा, अपने दृष्टि द्वारा इन जीवात्माओं को माया शक्ति में वो प्रदान करते हैं, शंभु के द्वारा। तो माया देवी प्रकृति कौन है? दुर्गा है। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो शंभु या शिवजी वो हमारे पिता के समान है, और दुर्गा देवी हमारी माता के समान है। शिवजी भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे पिता हैं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहः। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही दादा हूं, दादी हूं, सब कुछ मैं ही हूं। परंतु श्री कृष्ण स्वयं कुछ नहीं करते, अपने विस्तारों के माध्यम से वो सारे कार्य संपन्न करते हैं। तो जो जीव उनमें लीन होते हैं संहार के बाद, और जब सृष्टि के निर्माण करने का समय पुनः आ जाता है, तो अपने दृष्टि से फिर माया शक्ति में वो जीव जीवों को, आत्माओं को प्रदान कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे अपना कार्य चलते रहता है, सृष्टि का निर्माण होने जाता है क्रमशः। और हर स्तर में भगवान की दृष्टि की आवश्यकता होती है, काल शक्ति के साथ साथ। काल शक्ति, भगवान की दृष्टि, और ये जब हो जाती है तो फिर सृष्टि में क्रमशः सारे पदार्थों का निर्माण होने लगता है, उत्पादन होने लगता है। तो ये एक विशाल कारखाना है। जैसे रसायन के कारखाने में तरह तरह के रसायन बनते हैं, उसी प्रकार से इस विशाल एक कारखाने में ये सारे पंच महाभूत, ये सूक्ष्म इंद्रियां, ये सब कुछ बनते हैं क्रमशः, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसका एक क्रम है, ये बहुत वैज्ञानिक चीज है ये। और फिर से पूर्ण ब्रह्मांड जो है वो प्रकट हो जाता है। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं कि जब जीव महाविष्णु में लीन हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका वो अपना सत्ता खो बैठते हैं, अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं, अपने व्यक्तित्व को खो बैठते हैं, ऐसा नहीं है। उनका व्यक्तित्व पूरी तरह से बना रहता है, लेकिन इतना ही है कि वो सोए हुए होते हैं। सोया हुआ आदमी अपने व्यक्तित्व को नहीं खोता है, केवल थोड़े समय के लिए अपने व्यक्तित्व को भूल गया है। ठीक उसी प्रकार से भगवान महाविष्णु में सारे जीव जब लीन हो जाते हैं, वो सोए हुए होते हैं। रात को हम सोते हैं, रात की बात क्यों, भागवत क्लास में भी कभी कभी चुपकी आ जाती है, दो क्षण सो जाते हैं, तो उसमें और महाविष्णु के शरीर में लीन होकर सो जाना, इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल समय का अंतर है। यह हम 5 मिनट सोते हैं, वहां करोड़ों 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 साल सोते हैं, बात एक ही है, ज्यादा फर्क कोई नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से ये सब क्षणिक बातें हैं, इसलिए जीव का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। और ये तब तक जीव इस चक्र में अटका रहेगा तब तक जब तक कि वो ये समझ नहीं पाएगा कि मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूं और मुझे श्री कृष्ण की सेवा करनी है। जब ऐसे अपनी भक्ति को जीव परिपूर्ण कर देगा तब महाविष्णु में आगे लीन होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये संसार चक्र से वो मुक्त हो जाएगा और भगवान श्री कृष्ण से व्यक्तिगत रूप से लीला करने के लिए उस सामर्थ्य को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। यही जीव की परिपूर्णता है, उसके जीवन की सफलता है। तो इन सारी चीजों को ये महिलाएं जो हैं अच्छी तरह से जानती हैं और अपने स्तुति में इस ज्ञान को प्रस्तुत करती हैं। तो ठीक है, समय हो गया, यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के कोई प्रश्न है या टीका? हाँ जी, जी नहीं, ये पहला ही श्लोक है ये। आप इसमें दूसरे स्कंद में श्रीमद् भागवत के पढ़िए, इसमें भगवान जो है वो सारा भागवत का ज्ञान जो है तत्व उसको सार में देते हैं। कहने का मतलब है कि मुझसे अलग कुछ नहीं है, अगर मुझसे अलग होकर आप किसी चीज को ढूंढने का प्रयास करोगे तो वो मिथ्या होगा, वो भ्रम होगा। तो सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसमें भी भेद उन्होंने कर दिखाया है। ये दूसरे स्कंद में आप पढ़ पाओगे। नहीं, सुखदेव गोस्वामी का जो कहना है, उनका जो प्रवचन, वो तो दूसरे स्कंद से शुरू होता है। पहले स्कंद भी श्रीमद् भागवत है, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने ये प्रवचन दिया था परीक्षित महाराज को, तो वहां पर वेदव्यास जी भी उपस्थित थे, उनके पिता भी और गुरु भी वहां पर उपस्थित थे, वो भी उस प्रवचन को सुन रहे थे 7 दिन लगातार। उसके बाद में वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, फिर उन्होंने उसको लिखित रूप में रखा। इसलिए कई श्लोक हैं, जैसे ओम जन्मादस्यतः, ये सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं नहीं कहे, ये वेदव्यास जी आगे उसको इंट्रोडक्शन के रूप में भी दे रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड दे रहे हैं इसके लिए, बाद में लिखा गया। ठीक, एक यहां प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जो महिलाएं हैं वो भगवान के पास क्यों नहीं आईं? क्योंकि महिलाओं का यह विशेष गुण होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, वो है लज्जा। इसलिए वो एकदम सामने से नहीं आती थी, पीछे रहकर वो भगवान की स्तुति कर रही थी। लेकिन फिर भी इससे उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। भगवान सबको देखते हैं, इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो भक्त किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है वो अच्छा भक्त नहीं है। ऐसा नहीं है, शायद हम उसे देख पाए नहीं देख पाए। हो सकता है कोई छोटा बेचारा भक्त कहीं हो कहीं और बहुत अच्छी तरह से सेवा भजन कर रहा है ठाकुर जी का, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। चाहे हम आगे हों पीछे हों, हम सबको भगवान की सेवा में लगना है। तो एक स्वाभाविक लज्जा थी कि वो तुरंत ऐसे सबके सामने नहीं आए, परंतु उनके हृदय में भगवान के प्रति बहुत तीव्र भक्ति थी। तो अपने विचारों को उन्होंने इन सुंदर श्लोकों के माध्यम से प्रकट किया, प्रस्तुत किया। हाँ जी, आपका प्रश्न था ना। दो प्रकार प्रलय तरह तरह की होती हैं। एक जैसे हमने देखा सुनामी आया, ये भी एक तरह का प्रलय है ना, छोटा प्रलय है, हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी सृष्टि के संहार के तुलना में देखा जाए तो बहुत छोटा है, लेकिन है तो सही प्रलय। एक तो है जो कलयुग के अंत में या चतुर्युगों के अंत में होता है, चार युगों के अंत में, पुनः फिर सत्युग आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा का कल्प तो बहुत बड़ा है, ये तो केवल चतुर्युग की बात हो रही है, चार युग नहीं नहीं, एक चतुर्युग की बात हो रही है। सत्य त्रेता द्वापर कली, इसको एक चतुर्युग कहते हैं, चार युग। इसके बाद भी कभी कभी एक छोटा प्रलय होता है और कभी नहीं भी होता। और फिर ये चतुर्युग जो है हजार बार दोहराने से, हजार चतुर्युग जब हो जाते हैं तो ये ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है, ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिवस के बाद अवश्य प्रलय होता है, फिर ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। सारे जीव जो हैं, जो निम्न श्रेणी के लोकों में हैं, पृथ्वी लोक आदि, वो गर्भोदक्षाय विष्णु में या ब्रह्मा जी में रहते हैं, लीन रहते हैं। ऊपर के लोग जो हैं, जैसे ब्रह्मलोक जनलोक तपलोक, वो रहते हैं। और ब्रह्मा जी जब नींद से जाग जाते हैं, फिर से पुनः नया दिन शुरू हो जाता है, फिर पृथ्वी लोक के प्राणी सब आ जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के अंत में, फिर सबसे बड़ा प्रलय होता है, जिसमें सारा ब्रह्मांड जो है वो नष्ट हो जाता है। और फिर सारे ब्रह्मांड महाविष्णु में प्रवेश करते हैं, उनके दिव्य शरीर में। कभी कभी एक मन्वंतर के अंत में भी प्रलय होता है। एक कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिवस में, अर्थात हजार चतुर्युग में, 14 मन्वंतर होते हैं, 14 मनु आते हैं, मनु अवतार। तो कभी कभी इन मन्वंतरों के अंत में भी प्रलय होता है। तो देखिए प्रलयों की श्रेणी देखिए, एक तो है ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में सबसे बड़ा प्रलय, उससे छोटा होता है जो ब्रह्मा जी के दिवस के अंत में होता है, उससे कम होता है जो मन्वंतरों के अंत में होता है, उससे छोटा होता है जो चतुर्युगों के अंत में होता है। तो ऐसे तरह तरह के प्रलय हैं। ठीक है, तो कथा यहीं समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।